ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। इस वर्ष मॉनसून अवधि में सामान्य से अधिक वर्षा और गर्मी होने का जल तथा मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान। हुमला के तील गांव में हिमताल फटने से प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया और राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है, जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा जानकारी। पोखरा विमानस्थल निर्माण में भ्रष्टाचार होने के निष्कर्ष के साथ अनुसंधान करने के लिए अख्तियार को निर्देश देने का सार्वजनिक लेखा समिति का निर्णय और गजा में आवश्यक मानवीय सहायता वितरण के लिए यूएई और इसराइल के बीच हुई सहमति। अब समाचार विस्तार से। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने इस वर्ष मॉनसून अवधि में सामान्य से अधिक वर्षा और गर्मी का अनुमान जताया है। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने इस वर्ष की मॉनसून अवधि जून से सितंबर के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा और तापमान रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये जानकारी आज ललितपुर में आयोजित राष्ट्रीय मॉनसून फोरम 2082 में विभाग के वरिष्ठ मौसमविद विभूति पोखरेल द्वारा सार्वजनिक की गई। इस साल मॉनसून के दौरान अधिकतम तापमान भी सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। पूरे वर्ष में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं में से 40% घटनाएं मॉनसून अवधि में घटित होती है। इस दौरान बाढ़, भूस्खलन, फसल क्षति और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए पहले से तैयार रहने की सलाह दी गई है। नेपाल में हर साल मॉनसून के कारण 300 से अधिक लोगों की जान जाती है और $20 करोड़ से अधिक की आर्थिक क्षति होती है। विभाग ने स्थानीय प्रशासन और नागरिकों से आग्रह किया है कि वो बाढ़ व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतें, आपातकालीन सेवाओं के संपर्क नंबर तैयार रखें, मौसम अपडेट के लिए विभाग की चेतावनियों पर नजर रखें। हुमला की नामखा गांवपालिका वार्ड नंबर 6 तिलगांव में हिमताल फटने की घटना के अध्ययन के लिए गृह मंत्रालय ने टोली परिचालित की है। नेपालगंज पहुंची राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण की टीम नामखा में आई बाढ़ का अध्ययन करेगी। ये जानकारी हुमला के प्रमुख जिला अधिकारी नारायण पांडे ने दी। साथ ही तिलगांव में बाढ़ से प्रभावित 32 लोगों को सुरक्षित स्थान पर स्कूल और तिरपाल के नीचे रहने की व्यवस्था की गई है। विस्थापितों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए आवश्यक पाइप उपलब्ध कराए गए हैं। बाढ़ प्रभावितों के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री, कपड़े और स्वास्थ्य सामग्री भेजे गए हैं। ये जानकारी प्रमुख जिला अधिकारी पांडे ने दी। हिमताल फटने से आई बाढ़ में विस्थापित हुए लोगों ने शिकायत की है कि तिरपाल के नीचे रहने की मजबूरी के कारण उन्हें ठंड से काफी परेशानी हो रही है। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की सार्वजनिक लेखा समिति ने पोखरा विमानस्थल निर्माण में भ्रष्टाचार होने के निष्कर्ष सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग को अनुसंधान करने का निर्देश देने का निर्णय किया है। समिति की आज हुई बैठक में सभापति ऋषिकेश पोखरेल ने समिति के सदस्य राजेंद्र लिंगदेन नेतृत्व की उपसमिति द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन को अधिक जांच के लिए अख्तियार में भेजने का निर्णय किया है। सार्वजनिक लेखा समिति की बैठक में सदस्यों ने पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण में भ्रष्टाचार के मामले पर गंभीर चिंता जताई है। समिति के अनुसार 2 अरब 22 करोड़ रुपए से अधिक की कर छूट दिए जाने और 10 अरब रुपए से ज्यादा की धनराशि के भ्रष्टाचार के सबूत मिले हैं। समिति ने कहा है कि पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल नाम दिए जाने के बावजूद इसे वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं बनाया गया, जिससे भ्रष्टाचार की आशंका पुष्ट होती है। उपसमिति द्वारा तैयार रिपोर्ट में 10 अरब रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया है। समिति ने मांग की है कि इस मामले में शामिल सभी लोगों, चाहे वे किसी भी पद पर हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में पर्यटन विधेयक 2081 पर विचार करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक पर सैद्धांतिक चर्चा के बाद इसे स्वीकृति मिली। मंत्री पांडे ने कहा कि ये विधेयक पर्यटन क्षेत्र को सुशासन, प्रभावी संरचना और व्यावसायिक विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सांसदों ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र को सुरक्षित, टिकाऊ और जिम्मेदार बनाने के लिए कानून में स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने बताया कि संशोधन प्रस्ताव संघीय संसद सचिवालय या राष्ट्रीय सभा के विधेयक शाखा में दर्ज किए जा सकते हैं। विधायन व्यवस्थापन समिति की अध्यक्ष तुलसा कुमारी दाहाल ने पानी जहाज संचालन तथा प्रबंधन विधेयक 2081 पर समिति की रिपोर्ट पेश की। राष्ट्रीय सभा के सचिव डॉ सुरेंद्र अर्याल ने शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2081 से संबंधित प्रतिनिधि सभा का संदेश सदन के समक्ष रखा। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक जेठ 14 गते दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रतिनिधि सभा की शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति ने विद्यालय शिक्षा विधेयक से संबंधित उपसमिति की रिपोर्ट पर आज सांसदों ने अपने विचार रखे। सांसदों ने कहा कि आंदोलन के दबाव में कानून नहीं बनाया जाना चाहिए और लंबे समय से लंबित इस विधेयक पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाना चाहिए। सांसदों ने कहा कि सरकार और आंदोलनरत शिक्षकों के बीच सहमति के बावजूद विद्यालय कर्मचारी असंतुष्ट है, इसलिए सरकार को अभिभावक संघ और कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी मांगों का समाधान करना चाहिए। बैठक में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री रघुजी ने कहा कि लगातार चर्चा कर विधेयक को अंतिम रूप दिया जाएगा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने रुकुम पश्चिम के बाफी कोट गांव पालिका कार्यालय में प्रमुख प्रशासक की अधिकृत दुर्गा बहादुर ओली सहित 4 व्यक्तियों के खिलाफ 21 लाख रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। उन पर रुकुम पश्चिम की पीपल काड़ा मेल गैड़ी सड़क निर्माण योजना में वास्तविक कार्य से अधिक सड़क निर्माण का झूठा प्रतिवेदन बनाकर धन हड़पने का आरोप है। आयोग के अनुसार आरोपियों ने कागजी कार्रवाई में हेराफेरी कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया। ये मामला स्थानीय विकास आयोजनाओं में भ्रष्टाचार की एक बड़ी समस्या को उजागर करता है। बैतरी जिले की शिवनाथ गांवपालिका ने घर पर प्रसव शून्य अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर रहने वाली बस्तियों को विशेष रूप से लक्षित करते हुए प्रसूति सेवा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। गांवपालिका के अध्यक्ष कर्ण सिंह साउद ने बताया कि 17 प्रसूति सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं जो 24 घंटे सुरक्षित प्रसव सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। ये केंद्र गांवपालिका के 6 वार्डों में चलाए जा रहे हैं ताकि हर बस्ती और वार्ड में प्रसव के लिए चिकित्सा की सुविधा सुनिश्चित हो सके। इस पहल के सफल क्रियान्वयन के बाद शिवनाथ गांव पालिका को जल्द ही घर पर प्रसव शून्य घोषित किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। गजा में फंसे हजारों नागरिकों को राहत पहुंचाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। दोनों देशों ने गजा पट्टी में आवश्यक मानवीय सहायता जैसे भोजन, दवाइयां और अन्य जरूरी सामग्री के वितरण के लिए सहयोग करने पर सहमति जताई है। यूएई ने गजा के नागरिकों के लिए मानवीय सहायता भेजने की पहल की है जिसमें इजराइल ने सहयोग का वादा किया है। समझौते के तहत मदद सामग्री को मिस्र के रास्ते गजा तक पहुंचाया जाएगा क्योंकि इजराइल ने सीमा पर नियंत्रण बनाए रखा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। इस वर्ष मॉनसून अवधि में सामान्य से अधिक वर्षा और गर्मी होने का जल तथा मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान। हुमला के तीलगांव में हिमताल फटने से प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया और राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है, जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा जानकारी। पोखरा विमानस्थल निर्माण में भ्रष्टाचार होने के निष्कर्ष के साथ अनुसंधान करने के लिए अख्तियार को निर्देश देने का सार्वजनिक लेखा समिति का निर्णय और गजा में आवश्यक मानवीय सहायता वितरण के लिए यूएई और इजराइल के बीच हुई सहमति। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।